بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتین دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ फिर यदि तुम इन सब स्पष्ट निशानियों और चमत्कारों के आने के बाद भी फिसलकर पद भ्रष्ट हो गए तो जान लो कि ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ये पद भ्रष्ट इतने सारे स्पष्ट तर्कों के बावजूद इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर और फरिश्ते बादलों की छाया में प्रकट होकर इनके सामने आएं और इनके समक्ष नए तर्क रखें ताकि ये ईमान लाएं, जबकि लोगों के मार्गदर्शन के बारे में ईश्वरीय आदेश पूरा हो चुका है और सभी मामले ईश्वर ही की ओर लौटाए जाएंगे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज शुक्रवार है, हाजिर की 26 जमादियुरूला की 12 और दिसंबर की 17 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे पत्र संसार और अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। दोस्तों, ताजा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि वियना वार्ता में अच्छी प्रगति हो रही है। तेहरान पर दबाव बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की महासभा में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। जापान के ओसाका शहर में एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल ने गोलान हाइट्स में ट्रंप के नाम पर एक अवैध कॉलोनी बसाने का ऐलान किया है। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाए जाने और परमाणु समझौते में वाशिंगटन की वापसी को लेकर ऑस्ट्रियाई राजधानी वियना में जारी वार्ता के बारे में ईरानी मुख्य वार्ताकार का कहना है कि इस हफ्ते वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है। शुक्रवार को एक ट्वीट के जरिए अली बाखेरी कनी ने कहा कि वियना वार्ता में समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे यूरोपीय विदेश नीति के उप प्रमुख हेनरिक मोरा से गुरुवार को उनकी मुलाकात हुई। उनका कहना था, दूसरे प्रतिनिधिमंडलों से विचार विमर्श के बाद मैंने और मोरा ने स्थिति का जायजा लेने और आगे के रास्ते पर चर्चा के लिए मुलाकात की। बाकरी कनी ने कहा, इस हफ्ते हमने अच्छी प्रगति की है। आज हम एक संयुक्त आयोग को आमंत्रित करेंगे और कुछ दिनों के ब्रेक के बाद बातचीत फिर से शुरू की जाएगी। 2018 में परमाणु समझौते से निकल जाने वाले अमेरिका का दावा है कि वो फिर से इस समझौते में वापसी करना चाहता है और ईरान विरोधी अपनी अधिकतम दबाव की नीति को त्यागने के लिए तैयार है। हालांकि वाशिंगटन वियना वार्ता में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहा है। मानवाधिकार के संबंध में राष्ट्रसंघ की महासभा में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 78 जबकि विरोध में 31 वोट पड़े और 69 देशों के प्रतिनिधियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानवाधिकार के संबंध में ईरान के खिलाफ ये प्रस्ताव ईरान के समय के अनुसार आज सुबह पारित किया। याद रहे कि सुरक्षा परिषद के खिलाफ राष्ट्र संघ की महासभा में पारित होने वाला प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है और उसे केवल एक सिफारिश व अनुशंसा के रूप में जाना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ज़ायोनी शासन, सऊदी अरब, बहरीन और कुछ देश इस प्रस्ताव के समर्थक थे। जापान के ओसाका शहर में एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। रॉयटर्स के अनुसार ओसाका पुलिस का कहना है कि जानबूझकर आग लगाने की संभावना है और जांच पूरी होने के बाद ही कारणों का पूरी तरह से पता चल सकेगा। जापानी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि आग लगने का कारण एक संदिग्ध व्यक्ति है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियों को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि संकरी जगह पर इमारत के स्थित होने से आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओसाका शहर में स्थिति इस इमारत की चौथी मंजिल पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सामान्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला एक क्लिनिक था। चौथी मंजिल का इंटीरियर, दरवाजे और खिड़कियां जलकर खाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओसाका अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग में घायल हुए 28 लोगों में से 27 में जीवन के कई लक्षण नहीं दिखे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच प्रगाढ़ दोस्ती के स्तर को और भी बढ़ाने का समय है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ साथ भारत बांग्लादेश के संबंधों के 50 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हमारी साझेदारी के पहले 50 साल असाधारण चुनौतियों से पार पाने के साथ शुरू हुए, जिसने हमारे लोगों के बीच प्रगाढ़ दोस्ती का निर्माण किया, तो अब इसका स्तर और भी बढ़ाने का समय आ गया है। ज़ायोनी शासन की गृहमंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सीरिया की गोलान हाइट्स में कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है। रायल योम की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल की गृहमंत्री एलिट शाकेद ने डोनाल्ड ट्रंप नाम की नई कॉलोनी बनाने की योजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ज़ायोनी समाचार पत्र हारेट्स ने पिछले सप्ताह लिखा था कि इसराइली मंत्रिमंडल ने गोलान हाइट्स में निर्माण कार्य आरंभ कर दिए हैं। ज्ञात रहे कि अक्टूबर वर्ष 1972 में होने वाले युद्ध के बाद से अब तक ज़ायोनी शासन ने गोलान हाइट्स क्षेत्र में रहने वालों पर इसराइली नागरिकता थोपने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक उसके समस्त प्रयास विफल रहे हैं। जहां फेसबुक पर जासूसी और यूजर्स से संबंधित डाटा बेचने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं अब इस सोशल नेटवर्क की मालिक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने हैकिंग या दूसरे खराब व्यवहार करने वाली आधा दर्जन से अधिक निजी जासूसी कंपनियों का पर्दाफाश किया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद करीब 50,000 लोगों को सामूहिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तकनीकी कंपनियों, सांसदों और जो बाइडेन प्रशासन ने डिजिटल जासूसी के पैरोकारों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम शुरू की है। फेसबुक जैसी अमेरिका की कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर पहले भी कई तरह के जासूसी और यूजर्स की प्राइवेसी से खिलवाड़ करने के आरोप लगते रहे हैं और ये कंपनियां यूजर्स से संबंधित जानकारियां दूसरी कंपनियों और सरकारों को बेचती रही हैं। अब बाइडेन प्रशासन कुछ कदम उठाकर विश्व स्तर पर लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने का प्रयास कर रहा है। चीन ने अपनी 34 कंपनियों और संस्थानों को ब्लैकलिस्ट करने के अमेरिका के फैसले की कड़ी निंदा की है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को अमेरिका ने चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज सहित 34 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें उन्हें अमेरिकी तकनीक खरीदने से रोक दिया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को अमरीकी ट्रेजरी मंत्रालय द्वारा इस घोषणा से पहले वाशिंगटन की ब्लैकलिस्ट में हुआवेई समेत 20 अधिक चीनी कंपनियां शामिल थी। वाशिंगटन की इस कार्रवाई को बीजिंग ने अनुचित दमन बताया और चीनी व्यापार की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का वादा किया है। इससे पहले भी अमरीका ने चीनी सरकार पर अपनी सेना के लिए जैव प्रौद्योगिकी विकसित करने का आरोप लगाया था। वाशिंगटन का यह भी कहना है कि बीजिंग शिनजियांग में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को लक्षित करने के लिए दिमागी नियंत्रण तकनीक का उपयोग कर रहा है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण बाढ़ आ गई जिससे 8 व्यक्तियों की मौत हो गई है। प्राप्त समाचार के अनुसार इराक के अरबील इलाके में भीषण वर्षा और तेज हवाओं के कारण बाढ़ आ गई जिसकी वजह से 8 व्यक्तियों की जान चली गई। सूत्रों के अनुसार इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में कल से वर्षा आरंभ हुई है जो अभी तक जारी है, इस प्रकार से कि इराक के अरबील प्रांत के कई आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। अरबील प्रांत के गवर्नर ने इस संबंध में कहा है कि बाढ़ आ जाने के कारण 8 लोगों की जान चली गई है, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिज़वी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार करें। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं यमनी सेना की इंतकामी कार्रवाई।
सऊदीया बिस्तिमरार हिसारिहा व उदवानिहा अला यमन हुवा इस्तिमरार।
काबुल में शिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग। और कश्मीर में नमाज जुमा पर प्रतिबंध।
लेडीज को उनने कोई कानून नहीं तोड़ा।
तो पहले यमनी सेना की इंतकामी कार्रवाई का विषय। यमन की सशस्त्र सेना की मिसाइल यूनिट और ड्रोन यूनिटों ने सऊदी अरब की खमीस मशीत एयरबेस को निशाना बनाकर उस स्थान पर हमला किया जहां पर फाइटर जेट रखे हुए थे। यमनी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई हालिया दिनों में सऊदी अरब के हमलों में मारे गए लोगों के इंतकाम की कार्रवाई है। सनआ से IRIB के लिए अब्दुल्ला यूसुफी की रिपोर्ट, साथी मोहम्मद मेहदी की जबानी।
यमन की सशस्त्र सेना की मिसाइल यूनिट ने दक्षिणी सऊदी अरब के खमीस मशीद में स्थित किंग खालिद एयरबेस और अन्य जगहों पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता का कहना है कि ये हमले यमन पर सऊदी अरब के हमलों के तेज होने और इन हमलों में मारे गए लोगों के इंतकाम के लिए किए गए हैं। सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर हमले और सऊदी अरब की वायु सीमा में घुसकर कार्रवाई करना गठबंधन में शामिल देश की नाकामी का चिन्ह है और इस समय वो दुनिया की नजरों के सामने जवाबदेह बने हुए हैं। वो हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं और ये इस बात का चिन्ह है कि यमनी सेना और स्वयं सेवी बलों का पलड़ा بھاری ہے۔ یمنی سینا کے پروکتا یحییٰ سریع کا کہنا ہے کہ یدی یمن پر سعودی گٹھ بندھن کے حملے جاری رہے تو سینا اس سے بھی بڑھ کر ویاپک اور وسترت حملے کرنے کو تیار ہے، کیونکہ یمنی سینا اور سوئم سیوی بلوں نے ڈرون اور میزائل سہیت انیک سینیہ چھیتر میں کافی پرگتی کی ہے اور وہ آرتھک تتھا سمویدنشیل چھیتروں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔
السعودیہ باستمرار حصارها وعدوانها على اليمن هو استمرار۔
یمنی سینا کے ایک جنرل کا کہنا ہے کہ سعودی اشاسن یمن پر حملے اور اس دیش کا پرویشتن جاری رکھے ہوئے ہے، اس کو بھی ان حملوں کا جواب دینا ہوگا۔ 7 دسمبر کے حملوں نے سعودی عرب کے ایک چوتھائی حصے کو نشانہ بنایا اور یہ بہت بڑا سندیش تھا۔ ہم کیول تیل اور آرتھک تتھا سینیہ ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ راجنیتک اور اس سے بھی اہم ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی دھمکیوں کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یمنیوں کی جوابی کارروائی کی کوئی سیما نہیں ہے، کیونکہ یمنی سینا نے ڈرون اور میزائلوں کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی اور سے امریکہ سے خریدے گئے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مات دینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کے باوجود ریاض شاسن اور بھی ڈیفنس سسٹم واشنگٹن سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبداللہ یوسفی، IRIB نیوز، صنعاء۔
اور اب چلتے ہیں افغانستان۔ افغانستان میں ان دنوں کابل کے سب سے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں سفر کرنا بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پر رہنے والے شیعہ مسلمانوں کو آتنکوادی گٹ ٹارگیٹ کلنگ کر کے نشانہ بنا رہے ہیں۔ کابل سے IRIB کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ، ساتھی سید میزم کی زبانی۔
ان دنوں پشچمی کابل میں ان یاتری وینز پر سفر کرنا چنتا کا کارن ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ راجدھانی کے سب سے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں یاتریوں کو لانے لے جانے کا ایک ماتر سادھن یہی وینز ہیں۔ کچھ مہینے کے انترال کے بعد ایک بار پھر پشچمی کابل کے شیعہ مسلمانوں کی وینز کو نشانہ بنانے کا کرم شروع ہو گیا۔ یہی شیلی امریکہ دوارا افغانستان پر قبضے کے سمے شروع ہوئی تھی۔
بشکل سسٹمیٹک،
ایک استھانیہ ناگرک کا کہنا ہے کہ آتنکوادی شیعہ بہل علاقوں کو سسٹمیٹک ڈھنگ سے نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ سب امریکہ اور پشچم کی یوجنا ہے۔ کہتے ہیں کہ آتنکوادی ان وینز میں یا تو میگنیٹ بم چپکا دیتے ہیں یا یاتری کے طور پر خود گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور گاڑی میں بم چھپا کر اتر جاتے ہیں۔
تو متوجہ شد مردم متفرق کریں۔
سید جعفر ان گواہوں میں ہیں جنہوں نے ایک ہی جگہ پر 3 گاڑیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا۔ ان حملوں میں مارے جانے والے سارے کے سارے عام ناگرک ہوتے ہیں۔ ایسے حملوں میں گاڑی اور یاتری پوری طرح سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس طرح سے سوبھاگیشالی ہوں اور خود کو مکتی دلائیں۔ پشچمی کابل میں گاڑیوں میں ہونے والے ان سارے دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے سویکار کی ہے۔ ایک ناگرک کا کہنا ہے کہ داعش کا گٹھن کیسے ہوا، داعش کو پشچم نے بنایا اور اسے ساری سمبھاوناؤں سے لیس کر رہا ہے تاکہ وہ افغانستان میں اس کے لکشوں کو آگے بڑھا سکے۔ پشچمی کابل میں شیعہ مسلمانوں کی ٹارگیٹ کلنگز ایسی حالت میں جاری ہے کہ افغانستان میں یدھ سماپت ہو گیا، لیکن اس طرح کے دھماکے کچھ سوالوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔
مردم دیگه ہوشیار شدن، واقعا مردم بیدار۔
افغان ناگرک سید جعفر کا کہنا ہے کہ اب لوگ جاگرک ہو چکے ہیں، لوگ یدھ سے تھک چکے ہیں اور لوگوں نے آپسی مت بھید کو ختم کر دیا ہے۔ اس کھیتر کے نواسی افغانستان کی سطح پر قبضہ کرنے والے طالبان سے سرکشا کی گہار لگا رہے ہیں۔
از طالبان انتظار دارم۔
ایک ناگرک کا کہنا ہے کہ واسطوں میں طالبان اگر سیوا ہی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس معاملے کی سمیکشا کرنی چاہیے۔ امریکہ کی اپستھتی کے کال میں افغانستان میں داعش کے نام پر جو اپرادھ انجام دیے گئے اس نے پچھلے 2 دشکوں میں سب سے تراسدی پورن درشیہ پیش کیے۔ افغانستان میں حالیہ دنوں میں سرکشا اور ارتھ ویوستھا جیسے وشوں پر ہی چرچا ہو رہی ہے۔ اس دیش کے دشمن یہاں سے جانے کے باوجود بھی انہی 2 وشوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ بہنام یزدانی، IRIB نیوز، کابل۔
اور اب چلتے ہیں بھارت۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت نینترت کشمیر میں آج پھر نماز جمعہ پر پرتبند رہا، جس کے بعد استھانیہ لوگوں نے سرکار کے اس بہانے کے خلاف پردرشن کیے۔ ادھر کیندر سرکار کے نزدیکی گٹ نے بھی کیندر سرکار کی آلوچنا شروع کر دی ہے۔ وسترت رپورٹ کے ساتھ شری نگر سے ہمارے ساتھی سپتے محمد حسن۔
جموں کشمیر پرشاسن نے ایک بار پھر سری نگر کے ایتہاسک جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، جس پر لوگ کافی بھرم ہوئے، اور نوہٹا جہاں یہ جامع مسجد استھت ہے کے تمام چھیتروں میں لوگوں نے اس کے ورودھ میں بند رکھا اور زوردار پردرشن بھی کیے۔ الیکھنی ہے کہ پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ 19 کی استھتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ نرنے لیا، پرنتو استھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کووڈ ایک بہانہ ہے، باقی جامع مسجد نشانہ ہے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ دھارمک گٹھوں کے گٹھ بندھن متحدہ مجلس علماء نے بھی بار بار پرشاسن پر بل دیا تھا کہ وہ ایتہاسک جامع مسجد کو نمازیوں کے لیے کھولیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کووڈ پروٹوکولز پر مکمل طور پر عمل ہوگا، پرنتو پرشاسن یہاں پر نماز کی انومتی نہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس بیچ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے نئی دہلی کے پرشاسن کا آشیرواد ساتھ ہے، نے بھی پرشاسن پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ سجاد گنی لون نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر مہیلاؤں کی گرفتاری میری سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو افسر شاہی بیٹھے ہیں انہیں آج نہیں تو کل جموں کشمیر سے جانا ہوگا، پرنتو وہ یہاں پر زہر اگل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو استھتی وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بہت ہی گمبھیر پرینام نکلیں گے۔ سجاد گنی لون نے کہا کہ پریشر زیادہ دیر نہیں چلتا ہے، اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس کا یہ ماننا ہے کہ اس کے گمبھیر پرینام نکلیں گے۔ انہوں نے کہا
کہ لیڈیز کو انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے، کچھ بولا ہے جو انتظامیہ کو پسند نہیں۔ آلریڈی میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لگتا ہے کہ انتظامیہ ایک دنیا میں رہ رہا ہے اور لوگ دوسری دنیا میں رہے ہیں، اور ہر دن انتظامیہ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں نہیں رہ رہے ہیں، کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے لے کر رول کر رہے ہیں۔ میں تاکید کرتا ہوں انتظامیہ کہ آپ مہینہ، دو مہینہ، سال، دو سال کے بعد آپ کو جانا ہے، آپ تو ٹورسٹ ہیں، میں ہر بار بولتا ہوں، لیکن یہاں زہر مت اگائیے، ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے۔ آپ ایسے حالات، ایسا پریشر کوکر سچویشن بنا رہے ہیں کہ یہ ایک دن لاوا پھٹ جائے گا۔ دنیا میں دیکھیے کسی بھی جگہ نہیں چلتا ہے، آپ زیادہ دیر پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ڈرانا، دھمکانا، اس کی ایک شیلف لائف ہوتی، وہ ختم ہوئی جا رہی ہے۔
اس بیچ ایک بار پھر دکشنی کشمیر میں بھارتی سرکشا بلوں کے ساتھ ایک مڈ بیڑ میں ایک الگاوادی چھاپہ مار کے ہتات ہونے کی سوچنا ہے۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوا۔ دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہماری آج کی اس سبھا کے انت میں آپ سنیں گے کارکرم وگیان کی ڈگر، کنتو اس سے پہلے پرستوت ہے آپ کا من پسند کارکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔ دوستو، کارکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے۔ اپنی دیدی مریم مہر دادی اور بھیا احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
شروتاؤ، ہمیں آشا ہے کہ آپ سکشل ہوں گے اور اپنا من پسند کارکرم سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔
اور صدا کی بات یہ آپ کے کچھ پتر، ای میل اور کمنٹس کارکرم کی شوبھا بڑھائیں گے۔
تو دیکھتے ہیں کہ دیدی شروعات کہاں سے کر رہی ہیں۔
جی، سب سے پہلے آپ کو تو پتا ہی ہے آنند موہن بین کے ای میل سے شروع کر رہے ہیں۔
جی،
پریوار بندھو شارٹ ویو شروتا سنگھ کے یہ سدسیہ ہیں۔
جی،
اور لکھتے ہیں کہ श्रीमती फूलमाला बैन की स्मृति में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सभी को भाग लेने के अनुरोध के साथ आगे लिखते हैं कि इन्होंने प्रश्न वश्न पूछा है।
जी,
और श्रीमती फूलमाला बैन तो आपको पता ही है, इनकी पत्नी थी।
जी, जी, जी,
कुछ
जी,
समय हो गया, अभी बरसी नज़दीक है उनकी। तो लिखते हैं कि श्रीमती फूलमाला बैन 1995 से नियमित रूप से एक रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम सुनकर पत्र भेजती थी। क्या आप बता सकते हैं उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? और नीचे तीन उत्तर दिए गए हैं, इसमें बीबीसी, रेडियो जापान, रेडियो तेहरान, और आपको सही उत्तर लिखकर ईमेल पे भेजना है। और यह है आनंद मोहन बैन 10@gmail.com।
जी,
मैं ये सभी बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता है।
जी,
और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे होंगे
वो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
जी, तो उनका उनके प्रश्न ऐसे है, नहीं उत्तर उन्होंने कहा है कि आप, प्रश्न तो बता दिया मैंने, अब उत्तर है कि 31/12/2021 12 बजे तक मिलना चाहिए उत्तर सभी के।
जी,
और पूरा पता पिन कोड के साथ अंग्रेजी में लिखना है। ईमेल से एक ही उत्तर मान्य होगा। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 30 विजेता को उपहार दिया जाएगा।
जी, आनंद मोहन बहन जी का ये प्रयास सराहनीय है।
जी,
और उन्होंने अपने जो शौक का मैदान है और जिसके लिए वो ख़ास तौर पे जाने जाते हैं, यानी रेडियो कार्यक्रमों से जुड़े रहना और सक्रिय श्रोता के रूप में खुद को स्थापित करना, उसी से जुड़ी हुई श्रद्धांजलि ये अर्पित करना चाह रहे हैं, जो कि सराहनीय है।
जी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से उदयभान ठाकरे लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद कुछ संदेश आया, बहुत खुशी हुई, अब मन में रेडियो सुनने की इच्छा जागी। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि, और आप सभी को हार्दिक बधाई स्वीकार हो, और रेडियो तेरान का मोबाइल नंबर और लिंक भेजने की कृपा करें।
दीदी, ये तो आप कार्यक्रम के अंत में बता
हैं। देते हैं। जी,
लिंक कौन सा मांगा? मुझे लगता है वेबसाइट का एड्रेस पूछ रहे हैं।
पार्स टुडे वेबसाइट का लिंक
जी,
मांगा
तो आप तो कार्यक्रम के अंत में, उसके अलावा प्रसारण के दौरान भी हम ये एड्रेस अपने बताते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो मुतालबा है वो पूरा हो जाएगा। तो अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की। हमारे बहुत से श्रोताओं को ये खबर बहुत पसंद आती है और अपनी प्रतिक्रियाओं में वो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि दीदी ने क्या खबर चुनी है आज के कार्यक्रम की।
जी, और भैया जैसे आपने कहा, बहुत ही सही कहा, बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल्स आ रहे हैं, उन्होंने इसी के बारे में कहा है।
जी,
तो ईरान की बीच पोलो चैंपियनशिप का पहला दौर उत्तरी शहर तेलेश में हो रहा है। प्रतिस्पर्धी टीमें विभिन्न शहरों जैसे तबरीज, रश्त और बुइन जहरा से हैं, और पोलो खेल ईरान में कई हजार साल पहले से खेला जा रहा है।
जी,
ये लगभग 80 देशों में खेला जाता है, और ईरान में एक लंबे ब्रेक के बाद अब खेला जा रहा है 6 टीमों के साथ। पहली राष्ट्रीय पोलो चैंपियनशिप 2018 में तेहरान में आयोजित की गई थी, जिसमें मेजबान टीम टूर्नामेंट की चैंपियन बनी थी।
जी,
वर्तमान में गिलान में लगभग 50 पोलो खिलाड़ी हैं, जिनमें से 10 पुरुष वर्ग में और 8 महिला वर्ग के खेल में रहे हैं। तलेश और प्रांतीय राजधानी रश्त में गिलान के 2 पोलो फील्ड हैं। हमजे इलखानीजादे को आधुनिक पोलो के पिता और ईरान में पोलो राजदूत के रूप में जाना जाता है। इलखानीजादे विशेष अतिथि के रूप में तलेश गिलान में राष्ट्रीय बीच पोलो चैंपियनशिप के पहले दौर में भाग ले रहे हैं। और भैया ये बता दूं कि पोलो ईरान में बहुत सालों से کھیلا جا رہا ہے.
جی بالکل, کسی زمانے میں یہ کھیل راجاؤں کا اور شہزادوں کا کھیل ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اور یہ ویاپک ہوا, دنیا میں بھی ویاپک روپ سے پھیلا. اور شوتا, اب باری ہے کمنٹس کی جو آپ خبروں پر کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں دیدی نے کیا کمنٹس چنے ہیں.
عراق سے امریکی سینکوں کی واپسی ابھی بھی اسمنجس میں, اس پر آرین بہرامی لکھتے ہیں, ویسے یہ واسطو میں ایک اچھی خبر ہے لیکن عراق اور سیریا سے امریکی سینیہ اڈے کا پورن انمولن سب سے اچھی خبر ہوگی. امریکی اپرادھیوں کو افغانستان اور ویتنام سے سبق نہیں ملتا ہے, اس لیے انہیں زبردستی باہر نکال دیا جانا چاہیے.
جی یہ مہتوپورن وشے ہے کہ عراق سے اور سیریا سے امریکی سینک باہر نکلیں. استھانیہ لوگوں کا, استھانیہ سنگٹھنوں کا, استھانیہ طاقتوں کا یہ مطالبہ ہے, یہ مانگ ہے, اور یہ مانگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. عراق میں خاص طور پر بیان آ رہے ہیں عراقی سنگٹھنوں کے, الگ الگ گلیاروں کے, اور عراق کی سنسد ایک پرستاؤ بھی پارت کر چکی ہے جس میں یہ مانگ کی جا چکی ہے کہ عراق سے امریکی سینکوں کو باہر نکلنا چاہیے. عراق سے امریکی سینک جو تھے وہ تو ایک حد تک نکل گئے, لیکن لگ بھگ 2500 سینک ابھی بھی رہ گئے ہیں. امریکہ ان کو نکالنا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک الگ روپ میں باقی رہیں. امریکہ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کامبیٹ سینک نہیں رہیں گے بلکہ ایڈوائزری ان کا رول اور ان کی ذمہ داری ہوگی, یعنی یہ کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ یہ پرشکشن دیں گے, صلاحیں دیں گے داعش کے خلاف جنگ میں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود عراقی سنسد مانگ کر چکی ہے کہ امریکی سینک یہاں سے باہر نکلیں, تو یہ بن بلائے مہمان زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب باری ہے کسی شروتا کے وچار جاننے کی, تو اب دیدی بتائیں کہ کس کا چین کیا ہے.
جی پچھلی بار ہم نے ہماری دوست شہناز حسن نے حسن کی آواز سنوائی تھی,
جی,
اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا, اس کا دوسرا بھاگ ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں.
جی بالکل.
ریڈیو تہران کو نمن اور سلام. ہم آج کل اکثر دیکھ لیتے ہیں آپ کی سائٹ, اور ہم بہت زیادہ آبھاری ہیں کہ وشو بھر کی بالکل صحیح تصویر آپ ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. وشیش کر اسلامی جگت کے سماچاروں کے لیے تو آپ کے ریڈیو سے اتم اور آپ کی سائٹ سے اتم کچھ ہے ہی نہیں. بہت سے اس میں سماچاروں کے طرف اور بھی روچک جانکاریاں ملتی ہیں ایران کے بارے میں, وشو کے بارے میں, اور وشیش کر جو اسلامی جگت ہے اس کے علاوہ اسرائیل, طالبان یا لبنان, یمن, یہ سب ان سب ستھانوں کی جو سوچنائیں ہیں وہ بڑی چھن کر آتی ہیں ادھر. ہم لوگ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بتایا جاتا سب کچھ, اور وہ ہم آپ کی سائٹ سے اچھے سے سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وشو میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا گیم کھیل رہا ہے کس کے ساتھ, یہ ویسے نہیں سمجھ میں آتا. تو ہم بہت آبھاری ہیں آپ لوگوں کے سب کے, اور دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمیشہ اسی طرح سے سفل رہیں, اور اسی پر پرکار سے ہم سارے شروتاؤں اور دیکھنے سائٹ آپ کی دیکھنے والوں کو اچھے اچھے اور صحیح سماچار آپ دیتے رہیں, اور جو آپ لوگ ہم لوگوں کو اپلبدھ کروا رہے ہیں وہ واستوک روپ سے بہت ہی کہنا چاہیے ایک نایاب چیز ہے, آج کل کی دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا, اس لیے ہم بہت آبھاری ہیں آپ لوگوں کے, بہت بہت دھنیہ واد.
تو دیدی تھوڑا سمے ہمارے پاس بچ گیا ہے, आप कुछ कमेंट्स और भी पढ़ सकते हैं।
जी, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं के मामले में जल्द फैसला सुनाएगा ईरान। इस पर मूसा शाह लिखते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें दंडित नहीं करता है, लेकिन अगर उनके वैज्ञानिक जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं तो हो सकता है कि वे ऐसा करने से पहले दो बार सोचेंगे। वे हिट एंड रन का अभ्यास कर रहे हैं।
देखिए, ये इसराइल का बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है कि वो वैज्ञानिकों की हत्याएं करता है, और ये सिर्फ इस्लामी गणतंत्र ईरान की बात नहीं है, बल्कि इसराइल इराकी वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है, मिस्र के वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है, परमाणु वैज्ञानिकों की, और एक महिला वैज्ञानिक की भी एक संदिग्ध रूप से मौत हो जाती है। अच्छा, ये ज़्यादातर मौतें बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हैं, लेकिन इस तरह का है, घटनाएं इस तरह की हैं कि उस पर हॉलमार्क अगर देखा जाए तो वो इसराइल का ही नज़र आता है। तो ये अपराध इसराइल बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। रह गया ये कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो रोकथाम का तरीका इसका यही है कि खुद इसराइल के बारे में सोचा जाए, जो कि एक बुनियादी बीमारी है इस पूरे इलाके के लिए, कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म करना है। जब तक ये बीमारी बाकी रहेगी, इसके बुरे लक्षण और इसके कुलक्षण भी जाहिर होते रहेंगे, तो इसका बुनियादी तौर पर हल होना चाहिए। और बुनियादी हल इसका ये है कि जिसका इस्लामी गणतंत्र ईरान ऐलान भी कर चुका है कि इसका हल निकाला जाए, और इस इलाके में इसराइल के लिए कोई स्थान नहीं है।
प्रतिबंध हटाकर ही अमेरिका परमाणु समझौते में वापस आ सकता है। अब्दुल्लाहियान इस पर असद शेख लिखते हैं, शैतान कोई सौदा नहीं जानता। अगर 2015 में उनके हस्ताक्षर का कोई मतलब नहीं है तो JCPOA में उनकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं है और पूरी तरह से बेकार है। अमेरिका एक बनाना गणराज्य है और जल्द ही 2022 में फ्रांस वही होगा। पुरानी चुड़ैल के चले जाने के बाद ब्रिटेन उसका अनुसरण करेगा और दुनिया अपने ताबूत में ब्रिटिश वंपायर के साथ बेहतर होगी।
जी, ये बात परमाणु समझौते और परमाणु वार्ता से संबंधित है। परमाणु वार्ता के संदर्भ में इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपनी जो शैली रखी है वो ये कि वार्ता से पीछे नहीं हटेगा, साथ ही अपने कानूनी अधिकारों से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान अपने इसी स्टैंड पर पूरी तरह से अडिग है। पश्चिमी देश ईरान को पीछे हटाने के लिए और दूसरे विषय और दूसरे मुद्दे शामिल करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, आजमा रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी न तो मिली है और ना ही मिलेगी।
तो भैया, हमारे पास समय समाप्त हो गया। हम पता बता दें श्रोताओं को, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506542 और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi।
जी श्रोताओ, इसी के साथ अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अगली मुलाकात तक अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर अब्बास और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम ईरान और दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली तरक्की और थायराइड के समस्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के विशेषज्ञों ने
एक न्यूक्लियर मेडिसिन बनाई है जो मेटास्टिक यकृत कैंसर या यकृत के आरंभिक कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होती है। इस मेडिसिन का नाम Y19 रेजिन माइक्रोस्फेयर है। ये न्यूक्लियर मेडिसिन कैंसर के उपचार में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। ईरानी विशेषज्ञों ने यह न्यूक्लियर मेडिसिन ऐसी स्थिति में बनाकर बाजार में पेश की है कि इससे पहले तक केवल ऑस्ट्रेलिया की कंपनी सिटेक्स ही ये दवा बनाती थी और इसको सेरस्फेयर ट्रेडमार्क के साथ बाजार में पेश करती थी। ईरान ने जो न्यूक्लियर मेडिसिन बनाई है और बाजार में पेश की है उसे जल्द ही FDA से लाइसेंस मिला। इस दवा के हर डोज की कीमत ईरान से बाहर लगभग 5,000 से 8,000 यूरो तक है।
न्यूक्लियर मेडिसिन एक प्रकार की चिकित्सक जांच तकनीक है जिसमें रोगों की किसी भी अवस्था चाहे आरंभिक हो या गंभीर गहन जांच और इलाज इसमें किया जा सकता है। कोशिका की फिजियोलॉजी और बायोलॉजी में आ रहे परिवर्तन के आधार पर न्यूक्लियर मेडिसिन तकनीक से चिकित्सा की जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन तकनीक सुरक्षित, कम खर्चीली और दर्द रहित चिकित्सा तकनीक है।
आमतौर पर किसी रोग के बाद ही सीटी स्कैन, MRI और एक्सरे आदि से स्कैन करने से प्रभावित अंगों की स्थिति का पता चल जाता है। साथ ही इसकी स्कैनिंग के कुछ साइड इफेक्ट की भी संभावना होती है।
न्यूक्लियर मेडिसिन में रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा बहुत ही कम मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व प्रविष्ट करा दिए जाते हैं जिसे शरीर में संक्रमित या प्रभावित कोशिका अवशोषित कर लेती हैं। इससे होने वाले विकिरण को एक विशेष प्रकार के गामा कैमरे में कैद कर रोग की सटीक और विस्तृत जांच की जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैनिंग से मिली अलग फिल्म में प्रभावित अंग की विस्तृत जानकारी मिलती है। न्यूक्लियर मेडिसिन तकनीक में रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग इतने कम मात्रा में किया जाता है कि इससे होने वाले विकिरण का प्रभाव कोशिकाओं पर नहीं पड़ता है।
न्यूक्लियर मेडिसिन द्वारा कैंसर, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, थायराइड अपटेक स्कैन और बोन स्कैन किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य रोगों का इलाज भी न्यूक्लियर मेडिसिन द्वारा ही किया जाता है। थायराइड में आई खराबी और हड्डी में लगातार हो रहे दर्द का इलाज भी इसी तकनीक से होता है।
ईरान की पार्स आइजोटोप नामक कंपनी ने ये काम करना शुरू किया और रेडियो मेडिसिन या न्यूक्लियर मेडिसिन के उत्पादन के लिए अपना शोध कार्य शुरू किया और उसका क्लिनिकल टेस्ट का चरण भी सफलता के साथ गुजर गया। न्यूक्लियर मेडिसिन के क्लिनिकल टेस्ट में तेहरान और शिराज मेडिकल कॉलेज ने सहयोग किया और इसके शुरुआती हफ्ते में ही ये न्यूक्लियर मेडिसिन इंजेक्ट करने का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा और शिराज के केंद्रीय अस्पताल में पहले मरीज को सफलता के साथ लगाया गया। इस दवा के देश के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में खरीदार हैं।
दोस्तों, आज आपको हम थायराइड बीमारी के कारण, इसके लक्षण और उपचार के बारे में बताएंगे। थायराइड गले की ग्रंथि है जिसके बढ़ने से यह खतरनाक बीमारी का रूप ले लेती है। इस ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है और अगर यह हार्मोन में असंतुलन हो जाए तो ये रोग बन जाता है। यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है।
ये पाचन क्रिया को तेजी देने और खाने को जल्दी हजम करने में सहायक है। थायराइड में हार्मोन का बनना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं थायराइड होने के प्रमुख लक्षण और इलाज क्या है। थायराइड बीमारी के लक्षण और इलाज। थायराइड रोग दो तरह का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। जब थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज़्यादा हार्मोन पैदा करती हैं और हमारी पाचन क्रिया बढ़ जाती है जिससे वजन तेजी से कम होने लगता है तो इसे हाइपरथायराइड कहते हैं, और जब थायराइड कम हार्मोन छोड़ती है तो हाइपोथायराइड कहते हैं। इसमें आपका वजन एकदम से ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर सही समय पर आपने उपचार नहीं किया तो आपको आगे इसका इलाज करने में बहुत दिक्कत आने लगेगी।
थायराइड के मुख्य कारण ये हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तनाव लेना या किसी बारे में अधिक चिंता करने से ये समस्या हो सकती है। गलत दवा या ज़्यादा दवाओं के इस्तेमाल से ये बीमारी हो जाती है। गर्भावस्था के समय हार्मोन बहुत बदलते हैं, उस समय ये समस्या ज़्यादा होती है। वातावरण प्रदूषण से भी हमारी सांसों पर बुरा असर पड़ता है। परिवार में किसी को थायराइड होने पर इसका असर दूसरों पर भी होने लगता है। भोजन में कम या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल इसका कारण है।
थायराइड बीमारी के लक्षण जो शुरुआती 50 दिनों में मिलते हैं। थायराइड की समस्या होने पर व्यक्ति का मन किसी भी काम में नहीं लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाता है। व्यक्ति के सोचने और याददाश्त में कमजोरी आने लगती है। हम आपको हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों के कारण लक्षण और इलाज बताएंगे। पहले हम आपको हाइपोथायराइड होने के कारण इसके लक्षण और उपचार बताते हैं।
हाइपोथायराइड के लक्षण क्या हैं? ठंड का ज़्यादा लगना, कब्ज़ की समस्या, डिप्रेशन की समस्या होना, बालों का रूखापन और झड़ना, वज़न का एकदम बढ़ जाना, स्किन में सूखापन होना, थकावट महसूस होना, आवाज़ का भारी होना, चेहरे और आँखों में सूजन आना, सिर गर्दन और जोड़ों में दर्द की समस्या का होना।
बच्चों में हाइपोथायराइड के लक्षण क्या है? हाथ पाँव का ठंडा होना, बहुत अधिक नींद का आना, चेहरे पर सूजन आना, जीभ का सूज जाना, लगातार पीलिया होना, लंबाई नहीं बढ़ना। हाइपोथायराइड के इलाज के लिए आपको सिंथेटिक थायराइड हार्मोन T4 प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जो आप एक गोली के रूप में ले सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे लेने से पहले आप डॉक्टर को बाकी चल रही दवाओं या फूड सप्लीमेंट्स और डाइट के बारे में ज़रूर बताएं। इस बीमारी के हो जाने पर आपको समय समय पर थायराइड हार्मोन लेवल जांचने के लिए खून की जांच करानी पड़ती है और मौजूदा हार्मोन लेवल के हिसाब से दवाएं लेनी पड़ती हैं।
हाइपर थायराइड के लक्षणों में एकदम से वज़न का बहुत कम होना, सोने में दिक्कत महसूस होने लगती है, मल त्यागने में परेशानी होती है, अधिक पसीना आता है, त्वचा का पतला होना, नाखून का तेज़ी से बढ़ना, बालों का टूटना, पतला होना या झड़ना, दिल में एकदम से दर्द होना।
हाइपरथायराइड का इलाज करते वक्त आपकी उम्र, सेहत, सिम्टम्स की सर्टिविटी और ओवर एक्टिव थायराइड के असल कारण को देखकर किया जाता है। डॉक्टर इस बीमारी के इलाज के लिए कुछ तरीका अपनाते हैं। इनमें से पहला तरीका प्रोफोथायरसिकल एंड PTU मेथीमाजोल जैसी दवाएं दी जाती हैं, जो थायराइड ग्लैंड को नए हार्मोन पैदा करने से रोकता है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा तरीका सर्जरी द्वारा पूरा या थायराइड का कुछ हिस्सा निकाला जाना, जिसे थायरॉयडेक्टॉमी कहते हैं। इस तरीके में भी व्यक्ति को बाकी की जिंदगी अंडर एक्टिव थायराइड का इलाज करना पड़ता है। तीसरा तरीका हृदय गति को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स प्रयोग होता है। इसमें थायराइड हार्मोन का लेवल नहीं घटता, लेकिन हार्ट रेट सही हो जाती है।
थायराइड के घरेलू उपचार और देसी नुस्खे भी बहुत हैं। थायराइड बीमारी से बचाव में ताज़ी सुगंध वाली हरी धनिया पीसकर चटनी बनाएं और एक गिलास पानी में उसे घोलकर पी जाएं। इस नुस्खे को नियमित रूप से सेवन करने से थायराइड पर कंट्रोल होता है। तुलसी के पत्तों को पीसकर 2 चम्मच रस निकालें, फिर उसमें 1/2 चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करने से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है।
नियमित रूप से खाली पेट लौकी का जूस पीने से थायराइड बीमारी दूर होती है। इस जूस को पीने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। गाजर की सब्जी या उसका जूस पीने से थायराइड में कटौती आती है। रात को सोने से पहले गाय के दूध को गुनगुना करें और उसे अश्वगंधा मिलकर पिएं।
प्याज को बीच में से काटकर 2 टुकड़े करें और रात को सोने से पहले थायराइड ग्रंथि पर मसाज करें और बिना प्याज के रस को धोएं। रोजाना 1/2 घंटे 1 घंटा व्यायाम करें और इससे थायराइड कंट्रोल में रहता है।
थायराइड से ग्रस्त व्यक्तियों को विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां खानी चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां और गाजर प्रमुख हैं। इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आप दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अगर नारियल पानी पिएं तो और भी बेहतर है। थायराइड को जड़ से समाप्त करने के लिए आप प्राकृतिक आयोडीन का सेवन करें। इसके लिए आप लहसुन, प्याज और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ भोजन में ले सकते हैं। थायराइड में अंडे के बहुत फायदे हैं। आप उबले अंडे की सफेदी को खा सकते हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप सेब, अंगूर या नाशपाती जैसे फलों का जूस पिएं। थायराइड की समस्या होने पर धूम्रपान करने से बचें। बाजार में उपलब्ध सफेद नमक खाने से बचें।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताजा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।